صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام حمد و ثنا اس خداوند عزت کے لیے کہ جو اتنا بڑا ہے کہ اس کائنات میں نہیں سما سکتا، لیکن البتہ اتنا کریم ہے کہ ایک مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے. درود اور سلام ہو ان آل محمد پر، ان محمد و آل محمد پر کہ جن کے در پر آ کر درود خود سلام کرتا ہے. شکر ہے پاک پروردگار کا کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر صاحب ایمان بنایا، اور ہمیں ایک زائر بننے کی توفیق عطا فرمائی. آپ حضرات جو ہیں وہ آج یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس نہیں پڑھ رہا، میں آپ سے صرف باتیں کرنا آیا ہوں، میں آپ سے صرف پانچ باتیں کرنا آیا ہوں. میری باتوں کا کنٹینٹس یہ ہے، سب سے پہلے کہ زیارت کو کیا، زیارت کا مطلب کیا ہے، زیارت کرنا نہیں، زیارت کا مطلب یہ ہے، زیارت کا صاف مطلب ہے، زیارت عربی کا ورڈ ہے، زیارت کو اردو میں کہتے ہیں ملاقات. اور ملاقات زیارت کیسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، عابد انکل اسلام آباد میں رہتے ہیں، और हम कराची में रहते हैं। हमने आवेदन करने का आवेदन हम लोग आपकी ज्यारत करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब हम लोग कितना डिस्टेंस है, हजारों मील दूर है, इंसान चल नहीं सकता वहाँ, इतना दूर है। तो हम लोग जब आवेदन करके घर पे जाएंगे, उनके करीब आएंगे, इतना करीब आएंगे तो उनके आस पास में डिस्टेंस ना बचे, डिस्टेंस ही ना बचे, तो उसको कहेंगे ज़ियारत। और ज़ियारत इमाम हुसैन का मतलब ये है मुलाकात करना इमाम से। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता कि हम लोग इमाम के कितने करीब हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि कितने दूर है।
बेशक।
ये कैसे पता है मुझे, बल्कि आप सबको कैसे पता है कि हम लोग कितने दूर हैं? कि जब भी इंसान करीब होता है, मसलन हम उससे करीब है, तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो जब हम लोग मौला को सलाम करते हैं, तो क्या हमें मौला की सलाम का जवाब सुनने में आता है? नहीं आता। मौला तो सवाल का जवाब देंगे, क्यों सलाम का जवाब देना, सलाम मुस्ताहब है, जवाब देना वाजिब है, मौला तो देंगे, लेकिन हमारे कानों में नहीं आता आवाज, क्योंकि हम बहुत दूर हैं। और दूसरा बात ये है कि ज़ियारत का आखिर मकसद क्या है, और दूसरा एक ज़ायर है उसको कितना सवाब मिलता है। एक दफा का वाक़या है, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा मोमिन आया, उसने ये सवाल पूछा कि या मौला, एक जायर को कितना सवाब मिलता है? तो मौला ने कहा एक जायर को एक मकबूल हज के बराबर का सवाब मिलता है। वो चौंक गया कि मौला एक मकबूल हज? तो मौला ने कहा नहीं, 10 मकबूल हज के बराबर का। तो और चौंक हैरत अदा हो गया कि 10 हज के बराबर? तो मौला ने कहा नहीं, 100 हज के बराबर। तो और हैरत अदा होके खड़ा हो गया कि मौला 100 हज के बराबर? तो मौला ने कहा नहीं, 1000 हज के बराबर। तो वो खड़ा हो गया, उसका इतना ताज्जुब हुआ। मौला ने कहा, उसने कहा 1000 हज, 1000 मकबूल हज? तो मौला ने कहा नहीं, 1,00,000 हज। एक लाख हज। तो वो और हैरान ज़्यादा हो गया, मौला 1,00,000 हज? तो उन्होंने कहा, मौला ने कहा 1,00,000 हज नहीं, इतना सवाब है कि जिसको अल्लाह ही गिन सकते हैं। हमारी गिनती खत्म हो जाएगी, नहीं सवाब बढ़ता जाएगा, इतना सवाब है। बात ये है कि हमारी ज़ियारत का मकसद क्या है? हमारा तो यही मकसद होता है, जाओ और वो, और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि आप लोगों का दिल में ये इरादा हो कि सवाब कमाने के लिए जा रहे हैं। अब मैं आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या कह दिया सवाब कमाने के लिए जाते हैं, कई हज के बराबर गिन नहीं सकते, इतने हज का सवाब मिलेगा तो मैं को क्या हो गया? आप पता है ये सवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, लेकिन इसको हदफ से ज्यादा नहीं बनाना है। और दूसरी बात ये कि हमें गुनाहों की गठरी ले जानी चाहिए, ना कि इतना हमें गुनाहों का बैग ले जाना, ना के हमें हाजतों का बैग ले जाना। उन हाजतों के बैंक में सिर्फ दो धुएं रखे, जैसे लोगों ने मसलन रखी होती है कि किसी को वो हो जाए, किसी को हो जाए उसकी वजह से, किसी की शादी हो जाए, वो फला फला इतनी लंबी लिस्ट। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कोई इंसान इमाम की वजह से आता है? हम पहली हाजत जो है वो ये है कि मौला आपने मुझे सब अता किया है, मेरे पास दुनिया की हर चीज है, मेरे पास दुनिया की हर चीज है मौला, मौला बार 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 दुनिया की हर चीज है, आपने मुझे हर दुनिया की हर चीज से नवाजा है, बस नवाजा नहीं है तो आप खुद नहीं है, मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। मौला अली के पास हम लोग मामूली सी दुआ लेके जाएंगे, मौला कहेंगे कि जिस दुनिया को मैंने 3 दफा तलाक दे चुका हूँ उसको मेरे जाहिर मानने आ रहे, मौला हंसेंगे, मौला ये कहेंगे मैं तो समझ रहे बड़े हो गए, लेकिन ये तो एक वो बच्चे हैं जो टॉफी मांग रहे हैं मुझसे। अच्छा मिसाल के तौर पे एक शॉप है, उसके अंदर सारी नेमतें हैं, उसके अंदर हीरा और जवाहरात तो खूब सब है। हम लोग वहां गए, एक पत्थर छोटी सी कंकड़ लेके आ गए। मसलन मौला का जो दरवाजा है वो एक इतना बड़ा दरवाजा है, वहां आखिरत मिलती है, सबसे बड़ी चीज मिलती है आखिरत मिलती है। हम लोग क्या कहते हैं, जाते हैं आखिरत को भूल जाते हैं, हम लोग लेते हैं कि बेटा बड़ा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो बीमार है वो सही हो जाए, ये भी दुआ मांगे, नहीं तो हाथों पर आखिरत ना बने। और ये तहजीब अखलाक है, ये अखलाक है कि जब भी हम किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो चीज लेके जरूर जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं। अब मौला इनसे थोड़ी कुछ होंगे, मौला के लिए एक तोहफा बना ले। मसलन आपने कहा मौला आने के लिए मैं ज़ियारत आशूरा एक नमाज ऐसे 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 दर्जे, लेकिन अगर आप जल्दी की सूरत में तैयार ना कर पाए तो एक छोटा सा तोहफा है मौला के लिए। मौला के लिए वो छोटा सा तोहफा ये है कि मौला मैं आपसे ये अहद करता हूँ कि मैं आपसे ये अहद करता हूँ, यही इतना बड़ा तोहफा है, क्या है कि मौला मैं आपसे अहद करता हूँ कि जिंदगी में दुनिया में जो सबसे बड़ा गुना है, क्या गुना, गीबत का गुना है, वो मैं नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा, चाहे मुझे बोलना ही क्यों ना पड़े मैं नहीं करूँगा गीबत का गुना, ये अहद कर ले। या कोई और जो अपना तोहफा तैयार करके लाए वो अपना तोहफा पेश कर दे, लेकिन जो नहीं तैयार करी है वो उनके लिए ही है, जिन्होंने तैयार कर लिया है वो अपना दे दे। तो आपके तो जब हम लोग तोहफा लेके आते तो खुश होता है, और दूसरा तीसरी बात ये है, और दूसरा हम लोगों क्या है, और मौला मौला जो है इतने करीम है क्या, मौला ने उस तोहफे के बदले में हमें ये दीन अता किया, ये दीन आम दीन नहीं है, ये दीन बहुत कीमती दीन है, और ये दीन हमें आराम से 2 मिनट में नहीं मिला है, ये हजारों मोमिनीन की खून है इसके अंदर, इस दीन के अंदर। जैसे लोग समझते हैं ना कि हसन हसन कड़ा मौला को तीर मौला शहीद हुआ बस ये दीन मिल गया, नहीं, इसके पीछे हजारों मोमिनीन ने अपनी जानें दी है, क्योंकि एक वाकया है कि जिसमें एक औरत थी उसके 9 बेटे थे, एक जालिम बादशाह का दौर था, तो उसने कहा कि ए बादशाह मैं आपसे इजाजत लेती हूँ कि मैं आपके कुछ भी करूंगी लेकिन मुझे नहीं होगा, आशूरा में मैंने पढ़ करवानी है। तो उसने कहा एक शर्त पे, तुम्हारे 9 बेटे हैं ना, रोज आना, तुम्हें एक मजलिस पे एक बेटा ज़िबा करवाना पड़ेगा। तो वारा 9 मुहर्रम तक सारे बच्चों के कुर्बान हो गए। फिर जब 10वीं मुहर्रम आई तो वो रो रही, कहा क्यों रो रही हो, क्या अगर बच्चे इतने सीमती थे तो ना क्यों कहा उनको भेजा। तो उसने कहा बड़ा अजीब जुमला कहा, माँ ऐसा जुमला नहीं कह सकती, ऐसा जुमला कहा उसने कि मैं अपने बच्चों के गम में नहीं रो रही, मैं इस गम में रो रही हूँ कि काश मेरे पास 10वां बेटा भी होता, 10वां बेटा भी होता तो मैं वो उसको देखे आशूरा की मजलिस करवाती। और आज आजादारी के तौर पे जिसका सामने रोजा है हमारे, उस शहीद की आज 8 मुहर्रम को शहादत मनाई जाती है। मैं तो सारे 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे, लेकिन 8 मुहर्रम को एक शहीद की शहादत मनाई जाती है। वो एक ऐसा शहीद है, एक ऐसा शहीद है कि जो वो शहीद है कि जिसने हुसैन इब्ने अली की बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अपने बाजू दरियाए फरात पे कटवा दिया। कि जब आशूरा के दिन खेमों से आवाजें आ रही थी, नहीं एक दफा की बात है कि जिनका आवाज हमने भी जिक्र किया है कि एक सैयद हाजी महदवी थे या उनका नाम कुछ और था, सही थे या नहीं, तो वो जब भी इमाम हुसैन के हरम में यहीं थे, होते हैं जिंदा है अभी, वही वो जो है वो जब भी मजलिस पढ़ते थे वो मौला अब्बास के मसाइब ज़रूर पढ़ते थे। एक दिन उनके ख्वाब में बीबी फातिमा तो जहरा आई, उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे के मसाइब सही से नहीं पढ़ते, कंप्लीट नहीं पढ़ते। तो कहा कि बीबी मुझे जितने याद हैं मैं उतने पढ़ता हूँ, जिनका मुझे इल्म नहीं है मैं उनको कहाँ से पढ़ूंगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा, बीबी ने कहा कि जब भी तुमने मजलिस पढ़नी है तब ये मसाइब जरूर बयान करने हैं कि करबला का हर शहीद जब घोड़े से जमीन पे गिरा तब अपने बाजुओं के साथ गिरा, लेकिन है मेरा बेटा अब्बास जब जमीन पे गिरा तो अपने सर के बल गिरा, अपने सर के बल गिरा। जाहिर सी बात है मौला अब्बास के पास हाथ नहीं थे, और जब कईमों से अल अताश अल अताश अल अताश की आवाजें आ रही थी तब मौला अब्बास बीबी सकीना मौला अब्बास ने खेमे में जाकर बीबी सकीना का हाथ पकड़ा और कहा कि ऐ सकीना आगा से कहो कि मुझे जंग की इजाज़त दे, मुझे पानी लाने की इजाज़त दे। तो जब लेके गए तो मौला ने जनाब से कहा, मौला अब्बास से कहा कि ऐ अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाजत नहीं दूंगा लेकिन पानी लाने की इजाजत दूंगा, क्योंकि अगर तुम मैं शहीद खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार हो। तो मौला ने पलट के कहा कि आगा ये कहा कौन सा लश्कर है, कोई लश्कर किस लश्कर का मैं सिपाही सालार हूँ, किस लश्कर का मैं सिपाही सालार हूँ, उसके सकीना पकड़ी। अब मौला ने खूब डिफेंस किया, इतना डिफेंस किया कि सब नीचे गिर गए, सब नीचे गिर गए। हैरान ज़्यादा हो गया कि अली का बेटा कैसा है। उसके बाद मौला रास्ता कट गया तो मौला नहरे अलकमा की तरफ पहुंच गए। वहां से मौला ने चुल्लू भरा, वापस ही दरिया के मुंह पर तमाचे की तौर पे फेंक दिया। मौला ने पानी नहीं पिया। घोड़ा जब बहुत प्यासा होता है जैसे पानी नहीं फौरन पीता है। लेकिन अब्बास का घोड़ा, अब्बास का जुलजना इतना प्यासा था लेकिन अपने मालिक की तरह भी उसने भी पानी नहीं पिया। फिर मौला पानी लेके मशके में वापस डिफेंस करते हैं। अचानक से एक शखी ने मौला के दाएं बाजू पे वार किया तो मौला का दायां बाजू कट गया। उसके बाद आके जाके मौला का बायां बाजू भी कट गया। मौला ने मश्क दांत में पकड़ ली और अलम नीचे गिर रहा था तो उसको भी संभाला। और फिर मौला चलते रहे, आगे चलते रहे, इतनी अज़ियत के बावजूद भी चलते रहे। मौला को अभी तीर का पता नहीं था कि तीर कब आएंगे, कि अचानक से जैसे मौला के ऊपर जब आ रहे थे हाथों समेत तब तीरों की बारिश हुई थी, वैसे ही अब बारिश हुई। मौला जख्मी हो गए, तीन तीर ऐसे थे, एक तीर मौला की आंख में लगा, एक तीर मशके सकीना में लगा और एक तीर मौला के सीने को पार कर गया। मौला ने सदा दी आगा मदद को। तो जब मौला फिर भी जुलजना पे थे तीर लगने के बावजूद भी, फिर एक शखी आया, उसने तलवार का मौला के सर पे एक ऐसा वार किया कि मौला जख्मों की ताप न लाते हुए जुलजना से गिर गए। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो मौला से कहा मौला अब्बास ने इमाम से कहा कि मेरी एक अमल, मेरी वसीयत पूरे कर दे आगा। तो क्या? मेरी आँख में जो तीर लगा हुआ है उसको निकाल दे और एक तीर और जो खून है उसको साफ कर दे ताकि मैं आपकी ज़ियारत करता हुआ अल्लाह के पास जाओ। तो उन्होंने उनकी ये वसीयत भी पूरी कर दी। उसके बाद कहा, ऐ अब्बास मेरी ये वसीयत है, तुम ये भी पूरी कर दो। तो कहा, क्या? कि तुमने जिंदगी भर मुझे आगा के नाम से पुकारा है,